अरे अरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So we can start without delaying. Okay, so you have Bhagavatam there? If you have, it is fine, otherwise I will just... Because we want to follow the system Prabhupada gave. Okay, right, Sam Prabhu, leave it. Since I was doing katha, so no problem. Om Ajnana Tmirandhasya Jnananjana Salakaya Chakchur Jinmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Bhutairmahadibhi Aima Puro Bhivo Nirmaya Sete Yadamosu Purusa Bhukte Gunam Sodasa Sodasatmagam सोलं कृषिस्तं भगवन् बचामुसि मे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भावराधिका माधुरी अस्वादे सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्या कलि प्रकटे ब्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम लोग दशम स्कंद के तीसरे अध्याय ये कृष्ण जन्म की कथा है, आज की कृष्ण के आविर्भाव कथा है। तो तीसरा अध्याय आज करेंगे और चौथा अध्याय कल करेंगे। तो ये जो तीसरा अध्याय है, इस तीसरे अध्याय में जैसा कि मल का संक्षिप्त बताया था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। भले ही वे चतुर्भुज रूप में आए हैं, लेकिन वे स्वयं श्री कृष्ण हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कृष्ण अवतार। इसे वासुदेव अवतार नहीं कहा जाता है, इसे कृष्ण अवतार कहा जाता है। हां, जब अक्रूर जी कृष्ण को लेकर के गए, उस समय वो वासुदेव कृष्ण थे जो वहां पर गए, लेकिन क्योंकि वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, कृष्ण वृंदावन में निवास करते हैं, लेकिन ये जो अवतार है ये कृष्ण अवतार है। तो भगवान कृष्ण षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, इसीलिए इस अध्याय में भगवान का वर्णन छह प्रकार से किया गया है। छह विषय वस्तुओं के विषय में यहां पर बात किया गया है। जननम वर्णनम अस्तोत्रम सांत्वनम गमनम तथा षड्विधो भगवान अत्रह तृतीये विनिरूप्यते। विनिरूप्यते विशेष रूप से निरूपण किया गया है इस तीसरे अध्याय में भगवान के छह चीजों का इसमें वर्णन किया गया भगवत संबंधी। एक है जननम, भगवान का प्राकट्य, कृष्ण का प्राकट्य, जिसका वर्णन श्लोक 1-8 में किया गया है। दूसरा है वर्णनम, भगवान कैसे लगते हैं, भगवान कैसे लग रहे थे जब आए, उसका वर्णन, वह 9-12 चार श्लोकों में भगवत स्वरूप का वर्णन किया गया है। उसके बाद सांत्वनम, सॉरी अस्तोत्रम, भगवान का गुणानिवाद, यस अस्तोत्रम, देवकी और वसुदेव जी दोनों ने भगवान को नमस्कार किया, स्तुति किया, उसका वर्णन किया गया है श्लोक 24-31 8 श्लोकों में, ये देवकी के द्वारा, सॉरी 13-23 10 श्लोकों में वसुदेव जी के द्वारा, और 8 श्लोकों में देवकी के द्वारा। उसके बाद है सांत्वनम, देवकी और वसुदेव को भगवान आश्वासन दिए और पूर्ण जन्म का कथा बतलाए, इसका वर्णन है श्लोक 32-45 तक 14 श्लोकों में। ये 14 श्लोक में ही क्यों है इसका मैं वर्णन करूंगा, वसुदेव जी केवल 10 श्लोक में ही क्यों किए उसका भी मैं वर्णन करूंगा। और अंत में है गमनम, गोकुल पधारना, यह श्लोक संख्या 46-53 8 श्लोकों में बताई गई है। यह भगवान के षड ऐश्वर्य को सूचित करते हैं। तो षड ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण आए थे मथुरा में, इसीलिए सभी भक्तों को ध्यान देना चाहिए, इसे कहते हैं कृष्ण जन्म, कृष्ण अवतार या कृष्ण जन्म, क्योंकि कृष्ण आए थे। वासुदेव अवतार या वासुदेव जन्म नहीं कहा जाता है। अब चलिए हम लोग जननम के ऊपर वार्ता करते हैं। भगवान आए हुए हैं, उस समय कैसा था वहां का परिस्थिति, जैसे अंतःकरण जब हम लोगों का शुद्ध हो जाता है तब भगवान आते हैं हमारे अंतःकरण में। अंतःकरण शुद्धि का जो साधन है वह है श्रोताम स्वकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तनम, हृदयंतस्तहि अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। भगवान हमारे हृदय में तब आते हैं जब अमंगल कामनाएं जो है, जो अभद्र है, वह शुद्ध हो जाता है, तब भगवान आते हैं। अब वह अमंगल कामना शुद्ध कैसे होती है, तो तरीका बताया गया है श्रवणम कीर्तनम। ये जो शास्त्र में बात बताई गई है श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल कर करके दिए हैं। इस्कान में प्रभुपाद जी, यही इस्कान का स्थापना ही हुआ है श्रवण और कीर्तन के लिए। सुबह भागवतम क्लास, शाम को गीता क्लास, और प्राइवेट कीर्तन और पब्लिक कीर्तन, मंगला आरती, धूप आरती, संध्या आरती, और पब्लिक के लिए हरिनाम संकीर्तन। तो ये हरिनाम संकीर्तन और भागवत श्रवण जो है यह हृदय को पवित्र करता है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं भागवते कथा से तव अवतार धीर हैया सुने यदि काने बार बार। यदि धीर हो करके, मतलब अपने इंद्रियों को अपने बस में कर कर करके, जब कथा सुन रहे हैं तो केवल कथा सुने, वो मोबाइल का मैसेज न देखें और कुछ ना करें, ये सब छोड़ छाड़ करके ना। कि कभी कभी हम देखते हैं कि माता जी लोग कथा सुनती हैं लेकिन वो सब्जी भी बनाती रहती हैं साथ में, कुछ लोग माला बनाते हैं, कुछ लोग और कुछ करते हैं, तो ये इन अटेंटिव हो जाता है। अटेंटिव होकर के कथा सुनना चाहिए अटेंशन के साथ में। भागवते कथा से तव अवतार, धीर हैया सुने जदि काने बार बार। सावधानी के साथ में ये भागवत कथा सुननी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो भगवान वहां पर आविर्भूत होते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण अवतार के अवसर पर सबके शुद्धि का यहां पर वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 में ये सबके शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें 9 वस्तुओं के शुद्धि का वर्णन किया गया है। सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं, कहते हैं अथ सर्वगुणापेते काल परम शोभनम। संस्कृत भाषा में कोई वस्तु जब प्रारंभ करनी होती है तो अथ कहा जाता है, और जब समाप्त करना है उसे इति कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी और कृष्ण अवतार के कथा को प्रारंभ कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं अथ। भगवान आने वाले हैं, भगवान कहां आएंगे, यहां पर शुद्धि। तो प्रथम शुद्धि जो है वह काल की शुद्धि है। काल जो है वो नित्य है, काल कभी नष्ट नहीं होता है। भगवत गीता में 5 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से 4 नित्य हैं और कर्म जो है वह परिवर्तनशील है। तो काल इटर्नल है इस मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन है परिवर्तनशील। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काल में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में काल परिवर्तनशील है और सबको परिवर्तित करता है। तो पहला बताया गया है काल की शुद्धि, दूसरा दिशा की शुद्धि, तीसरा पृथ्वी की शुद्धि, चौथा जल की शुद्धि, अग्नि शुद्धि, वायु शुद्धि, आकाश शुद्धि, मन शुद्धि और आत्मा की शुद्धि। ये 9 द्रव्यों का अलग अलग नाम ले लेकर के सुखदेव गोस्वामी यहां पर वर्णन करते हैं। तो यह वास्तव में जैसे नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति हम लोगों को शुद्ध करता है, और शुद्धि के द्वारा हम लोग भगवान आते हैं। वैसे ही जब ये 9 द्रव्य शुद्ध हुए थे तब भगवान आए थे। अब काल की शुद्धि, भगवान काल से परे हैं, कालातीत है भगवान, काल से परे हैं। लेकिन काल को बड़ा दुख था कि भगवान हमारे अंदर नहीं आएंगे, मैं उनका सेवा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भगवान तो सभी के मनोवांछा को पूर्ण करते हैं। यदि कोई सेवा करना चाहे, कोई किसी रूप में सेवा करना चाहे, भगवान सब शुभ अवसर देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का सेवा करने के लिए हमको एमटेक, बीटेक, पीएचडी और ओ बनना पड़ेगा, तभी सेवा कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान के सेवा के लिए ये सब जो है वो एक्स्ट्रा है, दिमाग खराब करता है तो हमको पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बुद्धि रहना चाहिए तो भगवान का सेवा हो सकता है। ऐसा बात नहीं है, भगवान किसी का सेवा ले सकते हैं, बस हमें इच्छा होनी चाहिए सेवा करने की। जब प्रबल इच्छा होगी तो भगवान जरूर हमारा सेवा स्वीकार करेंगे। जो जिस रूप में पढ़ा लिखा है चाहे पढ़ा लिखा नहीं है, भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे। काल बहुत क्रूअल है, भगवान कहते हैं गीता में, कालो अस्मि माय टाइम, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। काल से सब लोग डरते हैं, लेकिन वह काल व्यथित था क्योंकि भगवान का सेवा नहीं कर पा रहा था। तो वह काल चाहता था सेवा करना, इसलिए भगवान काल के अंदर अवतरित हुए, और इससे काल बहुत प्रसन्न हुआ। जब मालूम हुआ कि कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं तो वह सभी गुणों से युक्त सुहावना हो गया, प्रसन्न हो गया। परम शोभनम, सर्व गुणों पेते काल परम शोभनम, सभी गुणों से युक्त होकर के वह प्रसन्न चित्त हो गया। काल अब दिशाओं का वर्णन करते हैं। जो दिशा है वो आशामयी है। तो ये दिशाएं प्रमाणित करती हैं कि सत्पुरुषों का आशा अभिलाषा ये सब पूर्ण हुआ। दिशाओं को भगवान के विराट स्वरूप का कान कहा जाता है। तो ये दिशाएं भी शुद्ध हो गई थी। भगवान को समझने के लिए हमारे समस्त इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई इंद्रिया है तो वह है कान। आंख से भी भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं, जीवा से भगवान का डेली प्रसाद का रस स्वादन कर सकते हैं, नाक से हम लोग भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प या तुलसी का गंध ले सकते हैं, लेकिन कान से सुने बिना ये सब वस्तुओं को हम इंद्रिय तृप्ति के रूप में भी ले सकते हैं। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। नवदा भक्ति का प्रथम भक्ति है श्रवणम, सुनना। कान बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को चाहिए कि हमें कान मिला है इसका हम दुरुपयोग न करें। नहीं तो भागवतम में वर्णन किया गया है वह कान जिसमें हरि कथा नहीं प्रवेश करता है, वह कान वो सर्प के बिल के समान है, है? कल मैं बता रहा था कि हरि भक्ति को विध्वंस करने वाले दो हैं। एक है प्रजल्प और दूसरा है वैष्णव अपराध। ये दो चीज हमारे भक्ति को नष्ट कर देते हैं। तो प्रजल्प हम कान से सुनते हैं। कान जो है ये विराट पुरुष के विराट पुरुष ये जो दिशाएं हैं विराट पुरुष के कान हैं। तो कान भी शुद्ध हो गया था, विराट पुरुष का जो कान यानी दिशाएं शुद्ध हो गई थी। उसके बाद पृथ्वी का वर्णन आया हुआ है। मही मही मंगल भूई अष्टपुर ग्राम ब्रजा करा। और मही मतलब पृथ्वी। देखिये भगवान की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है श्रीदेवी और दूसरे का नाम है भूदेवी। यहां पर आया हुआ मही मंगल भूइष्ट पुर ग्राम प्रजा कर। जो जिस प्रकार से एक पत्नी जिसका पति परदेश में रहता हो और जब पति आ रहा हो तो पत्नी अपने पति का आगवानी करती है, अपने पुत्र को आगे कर करके, पुत्र को आगे रखती है और पीछे रहती है, पुत्र को आगे कर करके पति का आगवानी करती है। मानो उसी प्रकार से माता पृथ्वी भगवान के आगमन पर प्रसन्न हो गई और अपने संतानों के साथ में, कौन संतान है यहां पर कहा गया है मंगलम हुयस्त पुर ग्राम ब्रजा करा। अपने पुत्र मंगल को गोद में लिए हुए अपने पति का यहां पर स्वागत कर रही है। कोई प्रसन्न हो गई, क्यों ना कोई पत्नी प्रसन्न होगी जब उसका पति जो परदेश रहता है आए तो। चौथा है जल का वर्णन किया गया है। जल दो प्रकार के होते हैं, नद्ध प्रसन्न सलिल हृदय जल जल रुहस्य। दो प्रकार का जल होता है, एक स्थिर जल और एक प्रवाहमान जल। जैसे नदियां इत्यादि हैं वो सब प्रवाहमान जल है। मैं संक्षिप्त में ही इसका वर्णन कर रहा हूं क्योंकि अपना समय जो है एक ही घंटा है ना, तो इसलिए उसके अनुसार ही। तो नदियां जो हैं वह प्रवाहमान है, लेकिन नद इत्यादि हृदय हृदय शब्द आया हुआ है, जो हृदय या तालाब है या छोटा छोटा बावड़ी है, इन सब का जल स्थिर रहता है। तो भगवान का जो आविर्भाव हुआ तो ये सब के सब निर्मल हो गए। नद प्रसन्न सलिल हृदय जल रुहाश्रिय। तो ये सब के सब प्रसन्न हो गए और अब आगे आता है अग्नि का वर्णन, अग्नि का वर्णन। अग्नि देव जो हैं वो देवताओं के लिए यज्ञ भाग आदि देते हैं, लेकिन कंस के अत्याचार से अब यज्ञ इत्यादि नहीं होता था, सब कुछ बंद हो गया था। तो अग्निदेव बड़े भूखे थे, सब कुछ ये हो गया था। तो जब भगवान आए तब तो अग्निदेव प्रसन्न हुए कि अब मेरा भूख मिट जाएगा। भोजन के आशा से अग्निदेव बेचारे प्रसन्न हो गए। ये असुर लोग बड़े परेशान करते हैं, तो सबको परेशान करते हैं, तो अग्निदेव भी। छठा जो है वो वायु का वर्णन आया हुआ है। वह वायु सुख स्पर्शम पुण्य गंध वह सुचि। और वायु जो है वो संपूर्ण विश्व के प्राण है। वायु 10 प्रकार के वायु होते हैं, ये सब वायु। इसका वर्णन भागवत महापुराण के 2 स्कंद के 6 में किया गया है। जब सृष्टि जब हो रहा था उस समय वायु का सृष्टि हुआ, वायु का सृष्टि क्यों हुआ उसका विशद वर्णन किया गया है। समस्त पंच महाभूतों का जो आविर्भाव हुआ उससे आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। ये 5ों महाभूत जो हैं आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इनका कैसे निर्माण हुआ, किस कारण से निर्माण हुआ, तो ये सब कंस के अत्याचार से अशुद्ध हो गए थे। अब भगवान आएंगे तो स्वागत के लिए अब यहां पर वायु तैयार हैं। स्वस्पर्श पुण्य गंध वह सुची, पवित्र सुगंध प्रवाहित हो रहा था। वायु जो होते हैं वो कैरियर हैं, सुगंध को कैरी कर रहे थे भगवान के आगमन पर। अब आकाश का वर्णन आया हुआ है। आकाश जो होता है वह गवाही देता है। कहते हैं ना कि भाई थोड़ा सावधान रहना, हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं ना वो हमारा बोला हुआ कहीं नष्ट नहीं होता है, आकाश में रहता है, हैं? आकाश गवाही का काम करता है। तो अब गवाही करने का समय आ गया है। स्वामी के सुभावन के अवसर पर जैसे जो सेवक होते हैं वो स्वच्छ वेशभूषा धारण करते हैं और शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार से सब नक्षत्र ग्रह तारे सब के सब शांत हो गए थे उस समय, और वे कृष्ण का स्वागत कर रहे थे। और मन के विषय में आया हुआ है, मन के लिए कहा गया है यहां पर, मनास्यान प्रसन्निह साधु नाम असुरद्रुहाम सुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन नेदु दुदु न दुंदुभ्यो द्वि। अब भगवान जब आए तो मन प्रसन्न हो गया, सुमनम शुद्ध प्रसन्न मन हो गया, और आकाश में जो देवता लोग थे पुष्प वृष्टि करने लगे भगवान के आगमन पर, और किन्नर नाग और जितने लोग थे दुमदुमी बजा करके भगवान विद्याधर इन सब का वर्णन किया गया है। ये सब लोग भगवान का अगवानी करना शुरू किए। मुमुचु मुनयो देवा सुमांसी मुदान्विता मंद मंद जलधरा जगर जूर नुसागरम निशिते तम उद्भूते उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशय आविरासिद यथा प्राच्या दिशि इंदुर इव पुष्कलम। अब भगवान जब आए उस समय सुशीतल सुगंधित वायु बह रहा था, समस्त देवता लोग पुष्प का वर्षा कर रहे थे, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वर्षा हो रहा था। और जैसे सागर में आवाज आता है उस प्रकार से आवाज आ रहा था, और भगवान जनार्दन देवक्या देव रूपिणिया विष्णु सर्वगुहाशय, भगवान सबके हृदय में निवास करने वाले भी भगवान देवकी के गर्भ में इस प्रकार से आए थे, वहां से ये प्रकट हुए। आविशद यथा प्राच्य दिशि इंदुरी पुष्कलम, भगवान वैसे ही देवकी के गर्भ से आविर्भूत हुए जिस प्रकार से पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा उदित होता है। तो इस प्रकार से भगवान के जन्म का यहाँ पर वर्णन किया गया इन श्लोकों में, आठ श्लोकों में। अब चार श्लोकों में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो इसको हमें अच्छा तरह से सुनना चाहिए ध्यान से। मैं ये भगवान के स्वरूप के ऊपर थोड़ा ज्यादा विशेष रूप से समय लूंगा, तो इसको आप लोग सुनिएगा। तम अद्भुतम बालक, तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवस्त्र लक्ष्म गलशोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोस पयोस सौभगम। अब यहां पर भगवान के लिए यहां पर कहते हैं तम अद्भुतम, तम मतलब वह बालक भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, यहां पर कहा गया है अद्भुतम, भगवान अद्भुत है। अब अद्भुत किसे कहते हैं, अद्भुत का मतलब है कि यहां पर भगवान के अलौकिकता का यह सूचना देता है, क्योंकि जो पदार्थ जो वस्तु लोक अथवा वेद में प्रसिद्ध होता है वह नेत्र गोचर श्रवण गोचर इंद्रिय गोचर होने के चलते वो सर्वसाधारण हो जाता है, वह आश्चर्यजनक नहीं रहता है। श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। तो वह आश्चर्यजनक नहीं रहता है, लेकिन यहां पर अद्भुतम कहा गया, अद्भुतम का मतलब है अलौकिक, जो इस लोक के नहीं है। टेबल चेयर जैसे यहां पर बना दिया जाए या लकड़ी से कुछ बना दिया जाए या खूब आश्चर्यचकित चीज जैसे अभी वो राम जन्मभूमि का वहां पर शिलान्यास हो रहा है, कैसे सजाया गया है दीप से इससे उससे, तो लोग कहते हैं बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है, पहले नहीं कभी हुआ था। तो यहां पर कहा गया है अलौकिकता वह है जो कि पदार्थ या वेद प्रसिद्ध नहीं है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है वह अलौकिक है, जो श्रवण गोचर नहीं है नेत्र गोचर नहीं है किसी इंद्रियों से इसे हम नहीं जान सकते हैं, इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रायम इंद्रिय सेवन मुखे जिह्वादौ स्वयमेव सदा। भगवान जो हैं इंद्रियों से परे हैं, तो भगवान का यह जो सौंदर्य है जो ब्रह्म हुआ यहां पर वे अलौकिक हैं, यही प्रमेय बल कहलाता है, यही प्रमेय बल है। तो जो वस्तु सदा देखने को ही बने, इस संसार का कोई अच्छा से अच्छा चाहे मूवी हो चाहे कुछ भी हो कितना बार देखोगे, एक बार दो बार तीन बार कितना बार, लेकिन यह अलौकिक जो वस्तु होता है हमेशा हम देखना चाहेंगे। जैसे भक्त लोग हमारे मंगल आरती होता है गुरु पूजा क्लास होता है, कितने तो ऐसे भक्त है मैं जूहू में देखा हूं कि एक लोग एक दो तीन भक्त हैं वो आते हैं वो जितनी आरती में खड़ा होकर भगवान को देखते रहते हैं, केवल देखते रहते हैं। हमने देखा है वृंदावन में भी कुछ ऐसे भक्त लोग हैं जा करके देखते रहते हैं। एक हमारे चौधरी टिक्के चौधरी कहते मैं तो केवल दिन भर राधा रानी को देखता रहता हूँ। मैं कहा कृष्ण को क्यों नहीं देखते, डर लगता है क्या कृष्ण को देखने में, कहीं राधा रानी था दयालु है ना माता जी हम पर कृपा करती है इसलिए मैं का दर्शन के चरणों का दर्शन करता रहता हूं। तो भगवान जो हैं वो अद्भुत हैं, इनको कोई दिन भर दर्शन कर सकता है, आंख नहीं हटती है, अंखिया लड़ी की लड़ी रह गई जब राम देखे सिया को सिया राम को, जब सीताराम एक दूसरे को देखे तो भगवान श्री राम और सीता जी एक दूसरे के, ये लोग अलौकिक थे, लौकिक नहीं थे। अब देखिए यहां पर भगवान का वर्णन किया गया है कि ए तम अद्भुतम का वर्णन किया गया है कि जो भगवान है वह द्वादश आत्मा है। भगवान को द्वादश आत्मा कहा गया, तो द्वादश रूप में उनके अलौकिकता को यहां पर वर्णन किया गया है। सर्व प्रकाशैव कालात्मेन्द्रिय नायक आत्मा कार्य च भूतानि अहंतत्वम उहौत्रयः अक्षरम भगवांश्चेति द्वादशात्मा हरि स्वयं। भगवान द्वादश आत्मा है, द्वादशात्मक है। जैसे पहला देखिए क्या द्वादश क्या वस्तुएं हैं जो बारह प्रकार से होती है, तो कहते हैं सर्व प्रकाश चैव, सर्व प्रकाश सब प्रकाश, द्वादश राशियों के द्वारा द्वादश सूर्यों के भांति भगवान सर्व प्रकाश है। बारह आदित्य है ना, वैसे ही भगवान सर्व प्रकाश है। दूसरा बात कहा गया है कालात्म इंद्रिय नायक, जो द्वादश महीने हैं उसके ये अधिष्ठाता हैं भगवान। द्वादश महीना में अलग अलग नाम है, दामोदर मंथ ए मंथ मंथ ऐसे, तो केशव नारायण माधव गोविंद द्वादश नाम से द्वादश ये हुआ है। तो कालात्म इंद्रिय नायकम, काल रूप भगवान हैं और उसके नायक हैं, काल के नायक हैं, यानी जो बारह महीना है बारहों महीने के वो नायक है। उसके बाद हमारे पास एकादश इंद्रिया और आत्मा, इन सब के भी नायक भगवान हैं। ये सब भी भगवान के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। तो दस इंद्रिया एक मन, पांच कर्म इंद्रिया और मन को भी इंद्रिया का मनस्थान इंद्रियाणी, तो ये छह हो गया और पांच कर्म इंद्रिया, ग्यारह हो गए। और कॉन्शसनेस कह सकते हैं या आत्मा कह सकते हैं, ये बारह हुए। इन के भी वे कंट्रोलर हैं। उसके बाद कालात्मनायकम आत्मा कार्यच भूतानि अहं तत्वम उभौत्रय। अब आत्मा यानी जीवात्मा और परमात्मा, ये दो हुए। आत्मा कार्यम च भूतानि अहमत्वम भौत्रय। अब देखिए आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा दो, और कार्य तीन, इसे कार्य और महतत्व और पंच महाभूतानि मतलब पंच महाभूत, अहंत्वम अहंकार, उभौ यानी दोनों प्रकृति और पुरुष, त्रय तीनों गुण सत रज और तम, और उभयोत्रय अक्षरम भगवान चेति, अक्षरम मतलब भगवान स्वयं परब्रह्म, भगवान को अक्षर कहा जाता है। क्षर मतलब जो नष्ट हो जाता है और अक्षर मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो आत्मा भी अक्षर है और भगवान भी अक्षर है। मैं हमेशा कहता हूं बताता हूं, एक स्वर है और एक व्यंजन है। जो स्वर है अ आ ई उ ये सब अक्षर हैं, लेकिन ये स्वर अक्षर हैं। ये जो स्वर अक्षर होते हैं उसे परब्रह्म कहा जाता है। स्वर मतलब जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, क्या सोचते हैं अंग्रेजी में भावल बोलते हैं, भावल बोलते हैं, भावल कंसोनेंट भावल ना, मैं भूल गया, भावल भावल हाँ। तो अ आ ई उ ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये स्वर कहते हैं। तो ये भी आत्मा है, ये भी अक्षर है, और जो व्यंजन है वह भी अक्षर है, जैसे क ख ग लेकिन कौ अपर डिपेंडेंट है, तो ये भी अक्षर है। इसका वर्णन श्रीपादजी गोस्वामी भागवतामृत व्याकरण में वर्णन किए हैं। तो क भी अक्षर है और अ भी अक्षर है, लेकिन जो अ अक्षर है वह इंडिपेंडेंट है, वह स्वर है, और क जो है वह व्यंजन अक्षर है, यानी डिपेंडेंट है। हरिनामामृत व्याकरण में आप लोग इसको देख लेना। तो ठीक वैसे ही भगवान विष्णु जो है स्वर अक्षर है, और भक्त लोग हैं या प्राणी जो है वो व्यंजन है, हम डिपेंडेंट है भगवान पर। क बिना अ के क का अस्तित्व तो नहीं है, वैसे ही बिना परमात्मा के आत्मा का अस्तित्व तो नहीं है, तो हम लोग व्यंजन है। तो यहां पर आया हुआ अक्षरम भगवान चेति, अक्षरम च इति, और दूसरा जो बात है वह है अक्षर पर ब्रह्म द्वास आत्मा हरि स्वयं। इस प्रकार से भगवान द्वास आत्मा साक्षात हरि वे यहां पर आए हुए हैं। तो तम अद्भुतम, ये तो अद्भुत का अभी तक वर्णन हुआ। तम अद्भुतम, वह बालक कैसा था? अद्भुत था। वो हरि कैसे थे? अद्भुत थे, जिन्हें द्वादश आत्मा कहा जाता है, जिसका मैं उल्लेख किया। अब आया हुआ है बालक। बालक किसे कहते हैं? बाले बाले को ब्रह्मा इति बालक। भगवान के यहां जस का निरूपण हुआ है, जिनके बाल बाल में प्रत्येक रोम के चित्र में ब्रह्मांड शरीरधारी ब्रह्मा है, ऐसा यह अद्भुत बालक था। ये ऑर्डिनरी बालक नहीं थे, बाले बाले को ब्रह्मा, वह बालक यह था। दूसरा बालक शब्द का अर्थ बालेभ्य कह अस्मात, जो बालेभ्य मतलब ग्वाल बालों का, और कह मतलब सुख, जो ग्वाल बाल को सुख देने वाला है, जो परब्रह्म के सुख से भी श्रेष्ठ सुख है, वैसा यह अद्भुत बालक है। कह बाल इति, कह मतलब ब्रह्मा जी, और बाल जिनके बेटे हो, ब्रह्मा जी जिनके बेटे हैं, वह यह बालक है। यह वह बालक है जिसके ब्रह्मा जी बेटे हैं। और बलभद्रेण साकम खेलताम बालानाम, बलदेव जी के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में, कह यानी सर्वश्रेष्ठ जो श्रीमणि है, बलराम और ग्वाल बालों में जो श्रेष्ठ जो है वह यह बालक है। तो तम अद्भुतम बालक। और अम्बुजे क्षण, आह क्या सुंदर शब्द है, चलिए थोड़ा ध्यान सुनो। अम्बुजे क्षण, अम्बुजे क्षण का मतलब होता है अम्बुजा जस इक्षण इति अम्बुजे क्षण। अम्बुजा का अर्थ क्या होता है? अम्बु मतलब समुद्र और ज मतलब उत्पन्न, और अम्बुजा जा मतलब उत्पन्न, जो समुद्र से उत्पन्न हो यानी लक्ष्मी जी। और इक्षण मतलब दृष्टि, जिनके दृष्टि में लक्ष्मी जी निवास करती है वो है अम्बुदेक्षण। तो जो प्रचारक लोग हैं लक्ष्मी कलेक्शन करने जाते हैं, बताओ उन लोगों को कहां तू लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो, तू नारायण का सेवा करो, उनके आंख में लक्ष्मी जी निवास करती है, भैया काहे चिंता करते हो, उनके आंख में ही उनकी दृष्टि पड़ गई, तुम्हारा कल्याण हो गया। इसलिए हरे कृष्ण का जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा कई कर सकता है, अंबुजा का अर्थ एक लक्ष्मी जी ही नहीं हुई, मैं तो कहता हूं समुद्र मंथन के समय जितने वस्तुएं निकली थी समुद्र से, वो सब के सब भगवान के दृष्टि में है। जैसे पहला निकला था विष, भगवान अपना भ्रिकुटी तान दे कभी गुस्सा में तो जल करके सब भस्म हो जाएंगे, कमी थोड़े भगवान के गुस्सा की। तो जो कुछ भी अम्बुजा इच्छण इति अम्बुज क्षण, अथवा अम्बुजा अम्बुजया रक्षण यस्य तम अम्बुज क्षण। अम्बुजया यानी लक्ष्मी जी और पृथ्वी दोनों निकली थी वहां समुद्र से, लक्ष्मी जी और पृथ्वी, इन पर जिनका अनुग्रह हो, जिन पर इन लोगों पर जिनका दृष्टि हो, भगवान की दृष्टि, भगवान की दो पत्नियां हैं श्री देवी और भू देवी, जो उनके प्राण धन हो वे हैं अम्बुज क्षण। तो तम अद्भुतम बालम अब्ज क्षणम चतुर्भुजम चत्वारो भुजा क्रियाशक्तयो अस्यः वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। ये चतुर्भुज जो है क्रमशः ये क्या है, वासुदेव जो है वो मुक्तिदाता है, संकर्षण जो है असुर बध विनाशक हैं, असुरों का वध करने वाले हैं, प्रद्युम्न जो है वो वंश वृद्धि के लिए हैं, और अनिरुद्ध जो है वो धर्म रक्षा का कार्य करते हैं। इसीलिए कृष्ण बलराम जो दो हैं, ये दो लोगों का प्रभाव वृंदावन और मथुरा में था, यानी वासुदेव और संकर्षण का प्रभाव जो था वो मथुरा और वृंदावन में था, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का जो प्रभाव था वह देखा जाता है द्वारिका कुरुक्षेत्र इत्यादि जगहों पर। तो भगवान चतुर्भुज रूप से आए थे, ये चत्वारो भुजा क्रिया शक्तयो यस्यः, भगवान इन्हीं भुजाएं संकेत करती है भगवान किस लिए आए थे। घातकौ रक्षकौ च उक्तो विरोधो अपि मति संकटे विदक्तम द्विविधम ज्ञानम भक्ति भगवता तथा। तो ये चार भुजाओं में चार वस्तुएं थी। क्या क्या चार वस्तु थी आप लोग बता सकते हो? सब जानते हो ना, शंख चक्र गदा पद्म, राइट। अब इसका वर्णन किया गया है यहां, क्या चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम घातकौ रक्षकौ। दो चीज जो थे वो बार करने के लिए थे, अटैक करने के लिए, घातकौ और रक्षकौ, और दो रक्षा करने के लिए, यानी उस जो शंख है वो शंख भक्तों का उत्साह बढ़ाता है, और कमल जो है भक्तों को आनंद देता है, और असुरों का विनाश करने के लिए गदा और चक्र है। तो दो घातक हैं और दो रक्षक हैं। अब यहां पर कहा गया है कि चौक्तो विरोधो अपि अति संकटे, कभी कभी ज्यादा संकट में पड़ जाता तो कभी कभी विरोधाभास भी हो सकता है। जैसे परीक्षित महाराज जब अपने माता के गर्भ में थे, उस समय भगवान ने क्या किया कि उन पर प्रहार भी कराया और उनका रक्षा भी किया, दोनों काम किए। तो यहां पर एक बात और है, शंख गदा युदा, देखो युदा का मतलब होता है ऊपर उठाए थे, ऊंचा उठाए थे। तो भगवान शंख और चक्र को ऊंचा उठाए थे, ऊपर रखे थे शंख चक्र को, ठीक ना। श्रीपाद सनातन गोस्वामी से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किए हैं, उनका पहचान जो होता है इसी से होता है, शंख चक्र गदा पद्म के पोजिशनिंग से होता है। तो कृष्ण कैसे हैं यहां पर, शंख गदा उदा युधा, शंख और गदा ऊपर रहते हैं इसमें। तो यहां प्रसंग दादम श्री वश्य लक्षम गलसौ भीत कौस्तुभम पिताम्बरम सांद्र पयो। तो चलिए थोड़ा फास जाना पड़ेगा, समय तो तैयार है। श्री वश्य भगवान श्रीवस्त धारण किए थे। श्रीवस्त किसे कहते हैं? श्रीवस्त एक चिन्ह है, एक चिन्ह है भगवान के वक्षस्थल पर, एक छाप है। लेकिन इसका असली मतलब समझिए किसे कहते हैं। श्री जस्य वस्सा इति श्रीवस्त। श्री जस्य वस्सा, श्री जिसकी पुत्री हो वो है श्रीवस्, और वो है भृगु मुनि। भृगु मुनि की पुत्री का नाम था श्रीदेवी और भूदेवी। ये श्रीदेवी भृगु जी की पुत्री है। और भगवान जब टेस्ट करने गए थे ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो सीधे पैर कहां मार दिए थे? भगवान के वक्षस्थल पर। और लक्ष्मी जी गुस्सा आ गया, लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दे दिया। तो भगवान उसको ऋण चुकाने के लिए भृगु मुनि के जो पैर का दाग है वो अपने वक्षस्थल पर हमेशा रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है श्रीवत्स लक्षम, श्रीवत्स लक्षम, श्रीवत्स का चिन्ह वहां पर भगवान के, जब भगवान ऐसे थे यहां श्रीवत्स का लक्षण था। गलसौ भी कौस्तुभम, और गले में कौस्तुभ मणि था, पीताम्बर धारण किए थे, और सब व्रण किया गया है। अब व्रण करने के बाद कहते हैं विरोचमानम वसुदेव एक्षतम। जब वसुदेव जी ये देखे तो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, ये सब देख करके बड़े प्रसन्न हुए वसुदेव जी। अब सविस्मयो अपलत विलोचनम हरि सुतम विलोक्य अनकदुंदवी। अनकदुंदवी जब भगवान को देखे तो बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने कुछ काम किया। कृष्णावतारो उत्सव संभ्रम स्पृशम मुदा द्विजेभ्यो अयुतम आप्लुतो गवाम। अब यहां पर वसुदेव जी दो कार्य किए हैं, क्रिया और ज्ञान दोनों एक साथ में वसुदेव जी में प्रकट हुआ। तो वे क्रिया किए, पहले क्रिया किए, और क्रिया रूप में उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को वहां पर उन्होंने दान दिया, ब्राह्मणों को वहां पर उन्होंने दान दिया। तो हालांकि देखिए वसुदेव जी कारागार में थे, उनके पास कुछ था नहीं, लेकिन कहा गया है मुदा मतलब प्रसन्न होकर के द्विजेभ्यो द्विजों को अयुत मतलब 10 लाख या 20 लाख, एक अयुत को कितना कहते हैं श्याम प्रभु आपको याद है? 10 लाख को एक अयुत कहते हैं। तो द्विजेभ्यो अयुत आपलुतो गमाम, सुसज्जित गायों 10 लाख गायों को उन्होंने दान दिया कारागार में रहते हुए भी प्रसन्न होकर के। तो जिसको भी संतान उत्पन्न हो उन लोगों को चाहिए मंदिर में दान दे तुरंत, है? भगवान को दान दे, ब्राह्मणों को दान दे। यहां पर द्विजे भ्यो जो संस्कारी व्यक्ति है उसको दान दे, क्योंकि भगवान को ही अर्पण करेगा। तो यदि पॉसिबल है तो डायरेक्टली मंदिर में दे देना चाहिए, और नहीं तो वैष्णव को दे, जो वैष्णव लोग उसको ला करके देखें। द्विज को देना चाहिए, नहीं तो पद्म पुराण में कहा गया है कि दान दिया गया और यदि भगवान की सेवा में नहीं किया गया तो देने वाले और लेने वाले दोनों नरक के भागी होते हैं। दान का अधिकारी केवल विष्णु है, दूसरा कोई नहीं है। दान जो होता है वो एक करणीय कार्यों में से है, सभी लोगों को दान देना चाहिए। पावनानी मनीषिणाम, ये साधुओं को, हम लोगों को कभी कभी दान दे देना चाहिए, मतलब भगवान को अर्पण करना चाहिए। दान दक्षिणा और सहयोग। आजकल जो लोग सहयोग करते हैं, जैसे अभी अपना कोरोना वायरस के लिए बहुत लोग पैसा दिए वो खाना खिलाने के लिए, तो ये दान नहीं हुआ, ये सहयोग हुआ। दान में कोई अपेक्षा नहीं रहती है। डोनेशन और चैरिटी में अंतर होता है। डोनेशन केवल विष्णु को दिया जाता है और चैरिटी एक निडी व्यक्ति को दिया जाता है। भगवान दरिद्र नारायण नहीं है, वो लक्ष्मी नारायण है, वो निडी नहीं है। इसलिए दान जो है वो कृष्ण के लिए है, विष्णु के लिए है, और जो सहयोग जो है वो निडी व्यक्ति के लिए। तो आज लोग समाज में लोगों को समझदारी नहीं है, इसलिए भक्तों के कंधे पर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे जाकर यही बताओ कि देर आर डिफरेंस बिटवीन डोनेशन एंड चैरिटी। इसको तुम चैरिटी कर रहे हो और कह रहे हो मैं डोनेशन कर रहा हूं, डोनेशन नहीं है। डोनेशन में, दान में चाहे इच्छा हो या ना हो करना ही पड़ता है। जैसे कई एक प्रकार का दान होता है, उसमें से एक होता है कन्यादान। जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो बाप माँ का सिर का बाल पकने लगता है। बेटा का विवाह हो या ना हो उनको चिंता नहीं होता है, लेकिन बेटी का विवाह होना चाहिए, तो उनके इच्छा पर नहीं है, एक करणीय कार्य है, ये मस्त है, बेटी का विवाह करना ही चाहिए। वैसे ही जो दान है भगवान विष्णु के लिए होता है, वो कन्या दान भी विष्णु को ही दिया जाता है। इसलिए कहते हैं पति परमेश्वर, वहां परमेश्वर का प्रतिनिधि है, उसको दिया गया। तो यहां पर और कहा गया है द्विजेभ्यो, द्विजों को, ब्राह्मणों को जो प्रतिनिधि हैं, उनको दिया गया, वसुदेव जी ने ये दान दिया। तो ये तो हो गया वसुदेव जी के द्वारा दिया गया दान, अब एक क्रिया हो गया। अब ज्ञान का वर्णन करते हैं, अथे नमस्तौ उपधार्य पुरुषम परम नतांग पुरुषम परम नतांगम कृतधि कृतांजलि शोरोचिसा भारत श्रुतिका गृहम विजोचयंतम गतभि प्रभावभि। वाह क्या सुंदर बात है। अब देखिए ज्ञान उत्पन्न हुआ, क्रिया से तो हो गया, अपना वो क्रिया कर लिए, अब ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो सोचे कि अब ये बेटा जन्म लिया है, यहां पर विस्मितम शब्द आया हुआ है उसके पहले, कि बड़े वो विस्मित हुए थे, प्रसन्न हुए थे। अब ये बेटा उत्पन्न हुआ है, अब इसका संस्कार करना चाहिए, जात संस्कार करना चाहिए। ननु पुत्र संस्कार कर्तव्यो जातकाख्येन कर्मणा ततः कथनम न कृतमान। ऐसा आशंका हो सकता है कि वसुदेव जी अब बच्चा जन्म लिया है तो उनको चाहिए था जातक संस्कार करना, लेकिन उन्होंने जातक संस्कार नहीं किया, क्योंकि गतभी प्रभाव प्रभाव भगवान के प्रभाव को वो जानते थे कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये प्राकृत बालक नहीं है, यह अप्राकृत बालक है। तो अप्राकृत बालक को यहां पर ये संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, इनको भगवान की दिव्यता का ज्ञान हो गया। और ज्ञान होते ही, जैसे कोई बड़ा आदमी आ जाए और पता चल जाए, जब पता नहीं है तो ठीक है, जैसे कोई नया भक्त है और राधे श्याम प्रभु का नाम सुना है, उनको देखा नहीं है, लेकिन कह दे कि राधे श्याम प्रभु आ रहे हैं, तुरंत साक्षात तो प्रणाम करेगा। जब ज्ञान नहीं है तो दूसरा बात है, जब ज्ञान हो जाएगा प्रणाम करेगा। वसुदेव जी को ज्ञान था, तो अब वसुदेव जी क्या कर रहे हैं, अब स्तुति करना शुरू किए, स्तुति करना शुरू किए। अब प्रश्न उठता है कि स्तुति या जो प्रणाम होता है, यदि आप लोग बताओ किसको हम लोग स्तुति करते हैं, किसका स्तुति करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं, हैं? बताओ कोई, किसका हम स्तुति करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं, कोई बताएगा? प्रणाम करते हैं आप लोग ना, क्या हैं, क्या क्या, जो हम जो हमसे बड़ा हो उसको हम प्रणाम करते हैं ही ना, जो हमसे श्रेष्ठ हो उसको हम प्रणाम करते हैं, राइट। अब यहां पर देखा जाए तो क्या बेटा बाप से श्रेष्ठ था क्या? कृष्ण का अवतार हुआ था, कृष्ण आए थे, तो क्या कृष्ण वसुदेव जी से श्रेष्ठ थे? वो तो बेटा थे ना, वो तो बेटा थे, लेकिन फिर भी वसुदेव जी प्रणाम किए, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया था कि ये समान बालक नहीं है, ये तो भगवान है। स्तुति की जाती है कद से और पद से, जो बड़ा हो। कभी कभी देखा जाता है कि चाचा जो होता है हमारा, हमसे 5 साल छोटा होता है और हम उससे 5 साल बड़े हैं, लेकिन वो पद में हमसे बड़ा है ना, चाचा जी है ना, तो हम प्रणाम करते हैं चाचा जी को, करते हैं ना, आप लोग करते हो ना, चाचा जी को प्रणाम करते हैं। और कभी कभी कद से, कोई हमसे 2-4 साल पहले सीनियर डिवोटी हो, जो सीनियर डिवोटी हो। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इसके क्लासिक एग्जाम्पल हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी क्लासिक एग्जाम्पल हैं। रूप गोस्वामी पद से बड़े थे सनातन गोस्वामी से, क्योंकि उन्होंने भगवान चेतन महाप्रभु का शरण पहले ग्रहण किया था, वैराग उन्हें पहले उत्पन्न हुआ, उनके शरण में पहले आए। तो जब भी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को मिलते थे तो उनको प्रभु एड्रेस करते थे, प्रणाम करते थे, और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के अग्रज थे, इसलिए जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मिलते थे तो उनको प्रभु कहते थे। क्या सुंदर, यही है कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम लोगों को अपना एडिकेट नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं कि जब भक्त लोग पीले कपड़ा पहनते हैं, उजला कपड़ा, तो दिन में 10 बार प्रणाम करते हैं, और लाल होने के बाद समझते मैं सीनियर हो गया, प्रणाम करने की जरूरत है। ये प्रणाम करना भक्ति है। भगवान कहते हैं मन मनाव हो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, प्रणाम करो, ये करना चाहिए। तो यहां पर वसुदेव जी स्तुति कर रहे हैं भगवान को, पूर्णतया जान करके कि ये परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, तो भगवान का स्तुति कर रहे हैं। कारण क्यों? कभी कभी केवल प्रशंसा करने मात्र से भी हो सकती है, लेकिन यह स्तुति वैसी नहीं है। कैसी है यह स्तुति? सततः यानी नम्रता पूर्ण स्तुति है। सततः पुरुषम, पुरुषम परम, परम पुरुष जान के कैसे कहते हैं, नतांगम, नत अंग, नत अंग। देखो कई एक प्रकार से प्रणाम होते हैं, एक अष्टांग प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम है, नतांग प्रणाम है, कृतांजलि है। साष्टांग तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अष्टांग तब होता है जब हम जिह्वा से उनका गुणगान करते हैं और मन में उनका चिंतन करते हैं, तो ये अष्टांग प्रणाम हो गया। उसके बाद कृतांजलि, हाथ जोड़ करके कृतांजलि प्रणाम करना, नतांग झुक करके, जैसे माता जी लोग प्रणाम करती हैं वैसे नतांग। तो यहां पर कहा गया है नतांगम, झुक करके प्रणाम किए, पूरा साष्टांग प्रणाम नहीं किए। अब कोई कह सकता है कि वे साष्टांग प्रणाम, ये प्रणाम करना साष्टांग, भगवान को प्रणाम करना है, साष्टांग क्यों नहीं? आप लोग बता सकते हो, माता कुंती जब भगवान को प्रणाम कर रही थी, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। तो प्रायः भगवान को प्रणाम उनके चरणों से किया जाता है, लेकिन माता कुंती भगवान को प्रणाम करना शुरू कहां से? उनके नाभि से, है ना, आप लोग पढ़े होंगे ना इस बात को। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रायः भगवान का प्रणाम तो हम चरणों से करते हैं, लेकिन माता कुंती उनकी बुआ भी है ना, कद में तो बड़ी है, कद में तो बड़ी है, बुआ है ना, तो भगवान को कहीं लज्जा न लग जाए, इसीलिए वो उनके नाभि से प्रणाम की। वैसे ही वसुदेव जी, आखिर तो बाप बापे होता है ना जी, भले भगवान वो जानता है कि मेरा बेटा ऑर्डिनरी नहीं है, पुरुषो परम, जैसे बाप भले अंगठा छाप हो और बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाए, लेकिन बाप तो बापे है ना, तो प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान को शर्म न हो इसलिए वे झुक करके ही प्रणाम के उतना से। सोरोचिसा भारत सूति काग्रह विरोचयंतम गत भी प्रभाव भी। इस प्रकार से वसुदेव जी प्रणाम किए। अस्तोत्रम, कैसे प्रणाम करना चाहिए बताएगा। स्तोत्रम काया वांग मनो भी कर्तव्यम, काया से, वाणी से और मन से, ये तीनों से हमें स्तोत्र करनी चाहिए। अच्छा, यह जो प्रणाम था, यहां पर एक शब्द आया है कृतधी। ये चमचागिरी नहीं वसुदेव जी कर रहे हैं, हम लोग कभी कभी काम निकालने के लिए चमचागिरी करते हैं। यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृतधी, जैसा भगवान है वैसा ही प्रणाम करना चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं व्यास पूजा के समय वो शिष्य लोग है ना, तो गुरु जी को तो भगवान बनाते हैं, उसका उनका इतना गुणानुवाद करते हैं, तो वैसा कार्य नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए बस तभी से कृतधी, जैसा कृति हो, जैसे भगवान प्रकट हुए उनको वैसा ही जान करके उचित तरह से प्रणाम किया, नहीं अन्यथा अनुचित हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है अन्यथा सत्तम आत्मानम अन्यथा प्रतिपाद्यते, आत्मा का स्वरूप कुछ और है और कुछ और कोई वर्णन करना शुरू करे तो यह जो है वह सही नहीं है। तो वसुदेव जी कृतधी यानी स्थित प्रज्ञ हो करके, स्थित प्रज्ञ है वसुदेव जी और भगवान को समझते हुए, जैसे कोई भीख मांग रहा हो या गरीब हो और कह रहे आप तो लक्ष्मीपति हैं, नो, तो एक कृतधी नहीं हुआ, जैसा काम वैसा नाम, उल्टा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब प्रणाम किए। अब यहां पर वसुदेव जी भगवान को प्रणाम किए हैं 14 श्लोकों में, तो क्या करें राय श्याम प्रभु, समय बहुत बहुत काट कूट करके प्रयास किया आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अभी घंटा में कहां, दो दो घंटे का ये होता है, तो अब बताइए क्या करें। वो तो मैं 2 मिनट में कह सकता हूं कि वसुदेव जी भगवान को प्रणाम किए इन श्लोकों में, उसके बाद माता देवकी ने प्रणाम किया 10 श्लोकों में, और तदोपरांत माता देवकी ने भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान आप अपने इस रूप को त्याग दीजिए, ये शंख चक्र गदा पद्मौला रूप को, और भगवान उन लोगों को सामने देखते, भगवान अपना रूप त्यागे, लेकिन उससे पहले भगवान जो सांतवनम, जो संतावना वाला है वो कार्य किए। तो आई थिंक हम लोग आज स्तुति तक तीन रखेंगे हम लोग आज, जो 6 चीज है उसमें से जननम वर्णनम स्तोत्रम, अब इतना ही तक रखेंगे। तो कल हम लोग थोड़ा स्तुति, संतावना और गमनम और कह करके विराज करेंगे, और उसके आगे वाला 4th अध्याय है उसको मैं संक्षिप्त में ले लूंगा 15 मिनट में। हरे कृष्णा, प्रश्न। नहीं, आपका आवाज क्लियर नहीं आ जा रहा है, कल क्लियर था, थोड़ा दूर से बोलिए। प्रभु मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा, बहुत थोड़ा दूर रखिए माइक को दूर रखिए। नहीं, 1 सेकेंड, आई थिंक कोई अपना, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज म्यूट इट, somebody is ऑन, दैट्स व्हाई इट इज इको दे रहा है पीछे से। ओके, राय श्याम प्रभु गो अहेड।
प्रभु ये धन्यवाद दे रहे हैं आपको, और बोल रहे हैं कि स्वर और व्यंजन के बारे में आपने जो बताया, भगवान और जीव के बारे में बहुत अच्छा लगा उनको। और एक प्रश्न है उनको,
नॉर्मली हम कहते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण से सारे अवतार आते हैं, तो कोई ऐसा प्रश्न करेगा कि जैसे यहाँ भगवान जैसे अलग दूसरे संप्रदायों में कहते हैं कि सारे भगवान कृष्ण भी जो विष्णु के अवतार है, तो यहाँ देवकी के जब गर्भ से भगवान का जब जन्म हुआ तब वो चतुर्भुज थे और वहां से फिर भगवान ने दो हाथों में द्विभुज करके उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ही विष्णु उनके अवतार?
ये बात मैं कल बताने वाला था लेकिन आपने पूछिए तो आप समझता हूँ। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि भगवान षड ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान कृष्ण अवतार लिए थे, कृष्ण ही अवतार लिए थे, इसलिए कहा था कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार था। और उसमें बलराम जी तो पहले ही आ गए थे लेकिन चारों चतुर्व्यूह के साथ में भगवान आए, इसलिए चतुर्भुज रूप में थे। मैं बतलाया वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, अनप्रद्युम्न, ये चारों हाथ जो था ये चार लोग हैं। और ये चारों किस कार्य के लिए उसका मैं वर्णन कर दिया। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि जिस समय भगवान चतुर्भुज रूप में अवतीर्ण हुए उसी समय जसोदा एक पुत्र को जन्म दी, एक पुत्र को जन्म दी जसोदा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जब माता देवकी ने कहा कि आप इस चतुर्भुज रूप को त्याग दीजिए, तो ज्यों ही माता देवकी ने इस बात को कहा, भगवान कृष्ण जो आविर्भाव हुए थे जसोदा के यहां, जसोदा नंदन, वे अपने अचिंत शक्ति से वहां पहुंच गए मथुरा और वे द्विज हुए। जो द्विज रूप है वो जसोदा नंदन का है। तो एक तरह से देखा जाए तो वसुदेव जी जसोदा नंदन को ही वहां से लेकर के आए, और ये जो चार हाथ था ये लोग अपने अपने काम के लिए इटरनली जहां जहां जाना था वो चले गए। जैसे अनिरुद्ध प्रद्युम्न उनका काम था मछली द्वारका में, कृष्ण और बलराम जो थे इधर के लिए। और ज्यों ही भगवान चार हाथ से दो हाथ स्वीकार किए उस समय उधर जोग माया का जन्म हुआ। वर्ण आया हुआ है कि दोनों एक साथ जुड़वा नहीं हुए, पहले कृष्ण आए और बाद में जोग माया, इसलिए जोग माया को अनुजा कहा गया है, कृष्ण की अनुजा है उनके आने के बाद। तो जो भगवान आए वहां पर चतुर्भुज रूप में, क्योंकि मथुरा जो है ऐश्वर्यमयी लीला है मथुरा की, तो वहां ऐश्वर्य दिखाने के लिए भगवान चतुर्भुज रूप में आए। लेकिन व्यक्ति एक ही थे, गोविंदम आदि पुरुष, हमें आदि पुरुष थे ही, वहां चतुर्भुज रूप में था ऐश्वर्य के लिए, और यहां पर मथुरा वृंदावन में आए वो माधुर्य के लिए। तो इसका व्याख्या मैं विशेष रूप से कल करूंगा, केवल आपने जो प्रश्न किया था उसका ही मैं इतना केवल थोड़ा उत्तर दिया कि वही कृष्ण थे और कृष्ण एक साथ में कई एक हो सकते हैं। जैसे रासलीला में देखा जाए तो एक ही कृष्ण 1108 गोपियों, समस्त गोपियों के साथ में एक ही कृष्ण थे, अलग अलग रूप में, एक ही रूप में थे लेकिन अलग अलग थे। तो वैसे ही कृष्ण के लिए चतुर्भुज रूप में द्वारका में रहना और द्विभुज रूप में यहाँ पर, सॉरी चतुर्भुज रूप में मथुरा में रहना, द्विभुज रूप में गोकुल में रहना, कोई ऐसा, ये तो जोग माया का प्रभाव है, उनकी अचिंत शक्तियों का प्रभाव है जिससे भगवान ऐसा किए। हम लोग देखे हैं कि एक साथ में भगवान ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला दोनों किए हैं। उदाहरण के लिए जब जसोदा मैया ने उनको सूचना मिला कि कृष्ण मिट्टी खाया है तो मैया को डाउट हो गया, तो भगवान ने कहा कि देख लो मुंह में, देख लो। जब मुंह देखने लगी तो क्या देखा, विश्व ब्रह्मांड को देखा। तो कृष्ण तो वही है ना, लेकिन अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, वो ऐश्वर्यमयी लीला है। लेकिन बाद में जब मैया का चक्कर आ गया तो बाद में माधुर्य लीला को देख ली मैया, कोई भी उन्हें विश्वास ही नहीं होगा ऐसा हो भी सकता है। व्यक्ति एक ही है, वैसे ही वही कृष्ण है और चतुर्भुज रूप में वहां पर हैं, और जो ही माता ने कहा दीदी बन जाओ तो वही तो थे ही, बस हो गए दीदी। ये भगवान के अचिंत शक्तियां हैं जो ऐसा कराती है। क्लियर? और कोई प्रश्न? एनबीसीसी वाले पूछ सकते हैं। सब लोग यदि म्यूट, अरे ये कानपुर वाले भी सुन रहे हैं क्या? अरे वाह,
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभुजी आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी एक एक शब्द की व्याख्या की है। तो मेरा इसमें एक प्रश्न है कि वो जो श्री वत्स का आपने जो मीनिंग बताया, मतलब अर्थ बताया, तो जैसे हम लोग जानते हैं और इसमें भागवत में भी लिखा है कि डेकोरेटेड विथ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेयर, तो मतलब जैसे गोल्डन हेयर, तो ऐसा हम लोग जानते थे, बट आपने जो व्याख्या बताया कि ये भृगु मुनि के जो चरण का चिन्ह है, तो मतलब इसका संबंध आप बता सकते हैं, मतलब क्या हो सकता संबंध?
देखो, कभी कभी बरसात के दिन में आप चले जाओ और आपके गड्ढा, आपके पैर से गड्ढा हो जाए, ठीक है ना, तो कुछ समय के बाद उस गड्ढे पर घास भी जम जाता है, लेकिन है तो आपके पैर का गड्ढा ना, आपके पैर का गड्ढा है। ठीक वैसे ही भृगु मुनि जी भगवान के वक्षस्थल पर, इसका व्याख्या वल्लभाचार्य किए हैं, वल्लभाचार्य के कमेंट्री से है कि श्री जस्य वत्सा इति श्रीवत्सा, श्री जिसकी पुत्री हो, और श्रीदेवी और भूदेवी भृगु मुनि और उनके वाइफ का क्या नाम था, अरुंधति, मैं भूल रहा हूँ, एनीवे भागवतम में है, तो उनसे उत्पन्न हुई थी। तो श्रीदेवी जिसको भगवान स्वीकार किए दोनों पुत्रियों को, तो एक तरह से देखा जाए तो नाता यदि जोड़ो तो भृगु जी ससुर थे और पहुंच गए अब अपने दामाद के वक्षस्थल पर पैर डाल दिए, और पत्नी के लिए पति पति होता है, लक्ष्मी जी पुत्री होने के बाद भी श्राप दे दी वहां पर, तो भगवान ने कहा तो गड़बड़ हो गया, तो ये ब्राह्मण देवता आए थे हमारे पास, हम सत्कार करने के बजाय तो उल्टा हो गया, तो भगवान ने प्रण लिया कि नहीं, ये चरण चिन्ह हमारे लिए हमेशा रहेगा। ये दूसरा प्रमाण है कि वैष्णवों को, भक्तों को भगवान अपने हृदय में रखते हैं, हालांकि लक्ष्मी जी का निवास स्थान है लेकिन भगवान भक्तों को अपने हृदय में रखते हैं। तो भृगु जी का चरण चिन्ह है वहां पर, सोने का वो हो तो, अरे हम लोगों का तो काला काला बाल होता है, भगवान का सोने का बाल हो गया तो बड़ा बात क्या है। और कोई प्रश्न?
प्रभु जी, कैन आई आस्क द क्वेश्चन? हरे कृष्णा,
वेयर फ्रॉम फर्स्ट यू गॉट टू गिव योर आइडेंटिटी, अदरवाइज
ई विल बिकम लाइक माय हंबल ओबेसेंसेस, रामप्रिया दास फ्रॉम इस्कॉन रांची।
अच्छा रामप्रिया, बहुत तो अपना आइडेंटिटी बताओ, नहीं तो फिर वो तो भूत बन जाओगे।
सो हंबल ओबेसेंसेस टू राधेश्याम प्रभु एंड योरसेल्फ, आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक अटेंडिंग दिस क्लास, सीइंग द डिवोटीज फ्रॉम पुणे एंड देयर, सो थैंक यू वेरी मच। पहली बार आपने डोनेशन और चैरिटी के बारे में इतना सुंदर बताया प्रभु जी।
अच्छा रामप्रिया, अपना चेहरा पहले दिखाओ हमको।
यस यस,
मैं स्वस्थ हो कि नहीं हो थोड़ा देखूं तो कम से कम।
हरे कृष्णा प्रभु जी,
नहीं तो लोग कहेंगे क्या हो रहा है आपके जीवन में। चेहरा दिखाओ भाई पहले, कहाँ है?
यस प्रभु जी, आई स्विच्ड ऑन माय वीडियो।
हाँ हाँ, अच्छा तिलक नहीं किया इसलिए बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बोलो चलो।
अचानक से आपका मैसेज आया तो मेरे तुरंत ऑन किया प्रभु।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रामप्रिया प्रभु जी वंडरफुल डिवोटी, प्रोफेसर बाय द वे, एंड ही डूइंग वंडरफुल प्रीचिंग इन रांची। हाँ बोलिए
प्रभु जी, आपने डोनेशन और चैरिटी के बारे में इतना सुंदर आज डिफरेंस बताया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड फर्स्ट टाइम मैंने प्रणाम के बारे में सुना देवकी नंदन प्रभु, थोड़ा सा और इलैबोरेट में वो जो अलग अलग टाइप के प्रणाम जो आपने बताए, जैसे कि नाभि का प्रणाम क्या, कैन यू थोड़ा सा और डिटेल में प्रभु जी इसके बारे में बताएंगे?
नहीं देखो, एक होता सष्टांग, तो हम लोग प्रणाम करते ही है, सष्टांग दंडवत, आजकल तो लोग प्रणाम भी नहीं करते हैं, प्रभु जी सष्टांग दंडवत, अरे भले दंडवत हो दंडवत नहीं करे सष्टांग, अरे कोई कोई किसी का ऑन है, प्लीज म्यूट इट, अदरवाइज आई एम हियरिंग इको वॉइस समबडी, ओके। हाँ तो सष्टांग मतलब छह अंग, दो हाथ दो पैर, वक्षस्थल और सिर भूमि पर पड़ा हो, उसे सष्टांग कहते हैं। और दो चीज इसमें और ऐड हो जाएगा, जैसे जिह्वा से गुणानुवाद भगवान का और मन से भगवान का चिंतन, तो ये अष्टांग प्रणाम हो गया। नतांग प्रणाम होता है, जैसे माताजी लोग जैसे करती हैं उसे नतांग कहते हैं, या आजकल कोरोना वायरस के समय लोग कहते हैं कि भगवान को प्रणाम मत करो, झुक कर प्रणाम, तो ऐसे हम लोग प्रणाम करते हैं, तो वो भी नतांग है। और कृतांजलि मतलब हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। आजकल तो लोग हाय हाय केवल कहीं हाथ से करते हैं, पता नहीं दूसरा हाथ क्या होगा, बल्कि दोनों हाथ से करो, इसे कहते हैं कृतांजलि। नाउ नाभि से प्रणाम करने का, हमें हमेशा भगवान को प्रणाम उनके चरणों से करना चाहिए, उनके चरणों से। कोई भी सज्जन व्यक्ति किसी के मुख पर नहीं देखता है, ये हम लोगों को ट्रेनिंग दी। हम लोग छोटे बच्चे थे, आपको याद होगा, तो हम बाप माँ के, पिताजी के मुख पर देखकर कभी बात नहीं कर सकते थे, हमेशा चरणों में देखते थे कुछ बात करना हो तो। यही है सज्जनता। तो सीनियर डिबोटी हैं, गुरुवर्ग हैं, उन लोगों के चरणों में झुक करके हमें बात करना चाहिए, ना कि आंख से आंख मिला करके बात करना, ये तो रूडनेस हो गया ना। तो वहां बन गए, माता कुंती प्रणाम जब कर रही थी भगवान के अंगों का, तो वहां पर ये नहीं वर्णन किया गया कि वो सष्टांग कर रही थी, सष्टांग तो कर नहीं सकती है, नतांग कर रही थी कृतांजलि के द्वारा, लेकिन वाणी के द्वारा वो गुणानुवाद कर रही थी, स्तुति कर रही थी, और वो प्रणाम कर रही थी तो भगवान के नाभि से, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। पहले भगवान के नाभि का, जो कि सब चीज का सेंटर है, यहां से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, और उसके बाद भगवान के वक्षस्थल का, भगवान के मुख का, और बाद में चरण कमलों का। और उस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोगों को चाहिए हमेशा भगवान के चरणों से प्रणाम करना। माता कुंती भगवान की बुआ थी अपने पोजीशन के अनुसार, इसलिए वे उनके नाभि कमल से, नाभि से प्रणाम करना शुरू किया। ठीक है रामप्रिया जी,
हरे कृष्णा।
यस,
थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।
रामप्रिया आप म्यूट कर दीजिए, नहीं तो फिर इको साउंड आएगा। हाँ बोलिए बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कृष्ण के जन्म के बारे में। तो मुझे दो तीन प्रश्न है। तो एक पहला है कि हम मतलब भक्तों के समुदाय में मतलब देखा है कि, और मेरे साथ भी हुआ है कि कभी कभी भक्त ऐसे पैर को छूते हैं और अपने सिर पे रख देते हैं हाथ को, तो फिर और इससे ये भी हो सकता है कि वो जो आगे वाला भक्त है वो नाराज हो जाए या डिसप्लीज हो जाए। तो ऐसा करने से मतलब वाकई में कुछ होता है क्या, ब्लेसिंग से या कृपा मिलता है क्या उस भक्त का हमें, मुझे ये जानना था।
देखिए स्पर्श इंद्रिया एक ऐसा है, उसका फल तो जरूर मिलेगा। अब यह देखना पड़ेगा कि संबंध क्या है। अब कोई भक्त कोई बाहर का आदमी है मान लो, और एक दूसरे के शत्रु हैं, और कोई जाकर उसका पैर छू ले, पैर छू कर प्रणाम करे, तो उस रूप उसको आशीर्वाद वो नहीं देगा, वो दूसरे रूप में देखेगा। लेकिन यदि आपके पिताजी हैं, उनका आप पैर छू कर प्रणाम करो, तो तहे दिल से आशीर्वाद देंगे, और वो जो आशीर्वाद है वो फलीभूत होगा आपको। तो वैसे ही हम लोग जो हैं, हम लोगों को वैष्णवों का वो पैर छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी हम लोगों को सिखाए हैं कैसे वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। पंचाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। झुक करके, नतांग हो करके हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए। कोई श्रेष्ठ वैष्णव है, गुरुवर्ग हैं, तो सष्टांग प्रणाम करें, अष्टांग प्रणाम करें इस मंत्र को बोलते हुए। ये शॉर्टकट नहीं, खड़े होकर दंडवत प्रभु, ये आजकल नया फैशन चल गया है, दंडवत प्रभु बोला तो इसलिए। लेकिन पैर जो छूना है वो कर्मों को लेना देना वाला हो जाता है। तो ऑफकोर्स यदि कोई आप, ये डिपेंड करता है आपके संबंध पर। यदि मैं उदाहरण दिया ना कि आपके पिताजी हैं, उनका चरण स्पर्श करो तो उनका वो आशीर्वाद देंगे तहे दिल से। लेकिन कोई अनजान व्यक्ति है, उसका चरण स्पर्श कर दो, चाहे कोई आपका शत्रु है, चरण स्पर्श करो, वो उल्टा ले लेगा। तो ठीक वैसे ही ऐसे कोई सीनियर डिवोटी है जिसको आप जानते हो, उसका आप पर कृपा है, तो उसका चरण स्पर्श करो, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, वो ऑफेंस नहीं लेगा। लेकिन मोटा मोटी चरण स्पर्श वाला नहीं करना चाहिए। आई मीन इस पुराने, इसको हम लोग तो एनीवे पहले बहुत भक्त लोग ये करते थे कि नहीं नहीं नहीं, कितने लोग चाहते थे पैर छूना और कितने लोग भाग रहे थे है? इसे पाप लगता है वास्तव में। आपको याद होगा जब चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर का मार्जन हो रहा था तो एक बंगाली भक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु का चरण धो करके और वो जो जल पान कर रहा था है? तो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य कहे तुम्हारा देखो ये बंगाली भक्त ने क्या कर दिया है, अब इसे चलते हमें इसका कर्म लेना पड़ेगा, भोग भोगना पड़ेगा इसको। महाप्रभु उसे पसंद नहीं किए। ऑफकोर्स का दो कारण था, एक कारण था कि भगवान के मंदिर में था जो कि वो सब प्रणाम ने उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी कहे हैं कि भगवान के सामने हमें किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, किसी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी का पैर नहीं धोना चाहिए, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो।
धन्यवाद प्रभु। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कृष्ण का नाम सुनते हैं तो मतलब उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव अलग होता है, और जब बाकी के जो कृष्ण के नाम है जैसे मधुसूदन और गोविंद और ऐसे बहुत सारे, तो उसका अनुभव अलग होता है। तो इसमें जो सब कृष्ण के नाम है तो कृष्ण के नाम जितनी ही पोटेंसी बाकी के नामों में भी है या उसमें कुछ डिफरेंस है?
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सब में नामनाम नकारी बहुत, नामना अकारी, ये अकारी है, जैसे बताया ना स्वर और व्यंजन ये स्वर है, नामनाम अकारी बहुधा ये सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणी न काल एतादृशी तो कृपा भगवान ममापि। सब में समान शक्ति है, वो नाम जो है नाम में गलती नहीं है, ये तकलीफ जो है वो हम में है। हम नित्य प्रतिदिन कृष्ण के विषय में सोचते हैं, कृष्ण के विषय में क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं तो कृष्ण का जब नाम लेते हैं तो आनंद आता है। जैसे नरसिंह देव का, नरसिंह देव देखा जाए तो वैकुंठ स्वरूप है भगवान का, नरसिंह देव का स्वर्गमयी है, लेकिन कितने ऐसे भक्त हैं जो कृष्ण का भी नाम नहीं लेते नरसिंह देव का नाम लेते हैं, उनको ज्यादा नरसिंह देव से फरोसस रूप है फिर भी उनमें ज्यादा ये है, क्योंकि हम सुने हैं उनके विषय में ज्यादा, तो हम कृष्ण के विषय में सुनते हैं। तो ऐसे भी कृष्ण जो है वो आदि है और सब जो है उनके कर्मों के अनुसार, जो भी जो भगवान लीला किए हैं उसके अनुसार उनका नाम आया है। भगवान माखन चोरी किया, माखन चोर रास रचाए, रास बिहारी, भगवान जो कर्म किए उसके अनुसार उन्हें, जो भी धराधाम पर काम किए उसके अनुसार वहां पर उनका नाम हुआ। लेकिन कृष्ण नाम जो है उनका ओरिजिनल नाम है।
धन्यवाद तो यस तो मेरा एक लास्ट प्रश्न है अभी, मतलब आप इच्छाओं के बारे में बता रहे थे कुछ, तो मतलब मेरे मन में कुछ कुछ इच्छाएं आती है, जैसे कि अभी आज श्रृंगार है तो मुझे लगता है मतलब कि अभी भगवान ये ड्रेस में दिखने चाहिए, तो कभी कभी ऐसी इच्छाएं पूर्ण होती है और कभी नहीं होती, तो ऐसी इच्छाएं रखनी चाहिए क्या हमने मतलब अपने जीवन में?
अरे कंजूस क्यों बनना चाहते हो, क्या तकलीफ इच्छा रखने, पैसा थोड़े लगता है, इच्छा रखो, यदि इच्छा तुम्हारा शुद्ध होगा तो भगवान सब इच्छा करते, इच्छा रखने में कंजूसी मत करो, लेकिन इच्छा होना चाहिए कृष्ण सेवा परक, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, निज इंद्रिय तृप्ति तार नाम काम, कृष्ण इंद्रिय प्रति वांछा धौरे प्रेम नाम, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए इच्छा हो। यदि इच्छा रखो यदि कृष्ण का भजन करूंगा तो अमेरिका का टिकट मिल जाएगा, ये तो तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति हो गई ना, तो अपने लिए मत रखो, कृष्ण की सेवा के लिए, वैष्णव सेवा के लिए। हो सकता है प्योर इच्छा ना हो, कंटामिनेटेड इच्छा हो, लेकिन फिर भी भगवान से कुछ भी नहीं छिपा हुआ, भगवान सब जानते हैं, और चूंकि आप वैसा इच्छा रखोगे भगवान आपके कंटामिनेशन को शुद्ध कर देंगे।
धन्यवाद प्रभु। अरे बोल एनसीसी, अरे युगल श्याम प्रभु, एनसीसी कोई पूछने वाले हैं प्रश्न उधर? म्यूटेड म्यूट मत करना हमको, एनएससी आपको पूछना है एनएससी से कोई? ओके देवगन प्रभु, इट वॉज वेरी नाइस टू हियर यू स्पीक ऑन तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षण. बहुत इतने विस्तृत तरीके से हमने कभी सुना ही नहीं है. बहुत अलग अलग आचार्य से आपने बहुत
ये तो आपकी नम्रता है पंडित जी हो. चलो
आगे
अच्छा लगा आप लोगों को. अच्छा है मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समानित्यम तुष्यंति चरमंति च. आनंद वास्तविक आनंद यही है, हरि कथा कहना और हरि कथा सुनना. ऐसे फायदा मुझे ज्यादा हुआ, आपको तो कम फायदा हुआ. आपकी एक इंद्रिया काम में लगी हो कान, हमारा जीवा और कान दोनों लगा, फायदा मुझे डबल हुआ है. कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं फायदा में. ओके धन्यवाद. अभी प्रसाद का समय हो गया, महाप्रसाद को बिंदु
भक्त प्रभु की.
अरे दे वांट टू आस्क एनबीसीसी वांट टू आस्क सम क्वेश्चन.
हरे कृष्ण.
बोलो हाँ हरि बोल, बोलो पूछ लो.
हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भगवान का जन्म होता है उस समय में कुछ लक्षण प्रकट होता है, जैसे रोहिणी नक्षत्र वगैरह होता है, तो ये केवल 5000 साल पहले ही ऐसे ही हुआ था कि अभी भी मतलब ऐसे भगवान का जन्माष्टमी का दिन ऐसे ही होता है?
जिस मैं कल इसका वर्णन किया था कि जिस रोहिणी नक्षत्र में एक होता ना, उसी समय होता है जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब आना चाहते हैं ना, उस समय ही यह होता है. भादो का महीना होना चाहिए, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, भादो महीना में रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, अष्टमी तिथि इत्यादि. ठीक है, भादो महीना में रोहिणी नक्षत्र आए. ओके प्रभु, क्लियर?
ठीक ठीक है प्रभु. हरे कृष्ण.
और कुछ भी है, सिंह राशि है और सब है, लेकिन मोस्टली जो है इम्पोर्टेंट वह है रोहिणी नक्षत्र. भादो महीने के रोहिणी नक्षत्र हो तो उसे जन्माष्टमी कहते हैं, उसको जन्माष्टमी कहते हैं. ऑल राइट, और कोई प्रश्न? नहीं तो हम लोग अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी रिक्ष संयुतः भवेत प्रष्ट पदे मासी जयंती नाम शास्त्री. भादो महीने के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी जो है वो जो रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो वह अष्टमी, भादो महीना का अष्टमी हो और रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो वह जयंती कहलाता है और कृष्ण उसी समय आते हैं. ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. रंध्रासन भागवतम की जय. श्रोता भक्त वृंद की जय.
हरे देवकनंद प्रभु की जय.
जय हो राधा कुंज बिहारी भगवान की. जय हो. नाइस.